Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawan Lal and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य. एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल.
Thank you, Manoj. Neke sir, welcome to the program. A quick look at the headlines. Domestic benchmark indices remain closed on account of Gandhi Jayanti. Markets in Asia, Europe and the US feel jitters after Iran's strike on Israel. And global crude oil prices surge 3%. Brent climbs over $2 to around $76 a barrel.
Gandhi Jayanti par sarvajanik avkash ke karan gharelu share bazaar aaj band rahe. लेकिन इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका, यूरोप और एशियाई शेयर बाजारों में कारोबार हुआ प्रभावित. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम 3% उछले. ब्रेंट की कीमत $2 से अधिक उछलकर $76 प्रति बैरल के आसपास पहुंची.
Domestic benchmark indices, the Sensex and Nifty, were closed today due to a public holiday on Gandhi Jayanti. Yesterday, both indices edged lower, extending the losing run to the third day. The Sensex dipped 33 points to end at 84,266. The Nifty also closed marginally lower by 14 points at 25,797. The Sensex has shed nearly 1,570 points, or nearly 2%, and the Nifty has declined 419 points, or 1.6% since Friday, after China announced stimulus measures to prop up its economy. Ike sir, I know that a lot of, and today of course being a trading holiday, the shares have not reflected the Iran and Israel conflict escalation. How do you think this will pan out tomorrow?
Well, I think it's reasonable to say that the markets will remain nervous tomorrow because of the way the geopolitical risks that we saw manifest themselves play out and pan out. So markets will probably be in a guarded position, and if somebody had expected a kind of a recovery of the markets tomorrow after today's close, my sense is those that recovery expectations will probably be belied. Also remember that the Indian situation on the crude oil front is not looking very good because of a sudden increase in the Brent crude. So India crude basket, which is what actually matters, will probably also see, may not be a $2 increase as in the Brent, but at least maybe at least a dollar, which will take our total cost of crude maybe to $71 a barrel for the whole year. Now, this is not something which is problematic or alarming. We actually seen worse days,
right?
But the calculations that the oil companies, the government, and even the retail companies, the manufacturing sector had made on the basis of a benign oil prices will probably have to be revised. And finally, I think the Monetary Policy Committee, which will meet with the new MPC in tow, will have to have a fresh look at their entire approach. They might see the food prices may be under control, but given the fact that geopolitical risks have actually increased, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India will have to take a fresh look at, is it the right time to change your stance or do something like what the US Fed or the London the UK Central Bank has done. So I think these the next few days, new I would say even about a week or so, will be testing times for both the market regulator as well as market participants.
श्रोताओं, मौद्रिक समिति की अभी चर्चा हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की. हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें जो ताजा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे कि कौन कौन इसके नए सदस्य बनेंगे.
राइट, सो द गवर्नमेंट इज नोटिफाइड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934. द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी. The Deputy Governor of the RBI in charge of monetary policy and one officer of the RBI to be nominated by the Central Board are also the ex-officio members of the committee. The Director of the Delhi School of Economics, Professor Ram Singh, Economist Saugata Bhattacharya and Director and Chief Executive of the Institute for Studies in Industrial Development, Dr. Nagesh Kumar, have been appointed as members of the committee. The committee shall hold office for 4 years with immediate effect or until further orders.
हम देश की मौद्रिक नीति पर भी चर्चा करेंगे और क्या रहने वाले दिनों में आसार हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एकेबी बाजार के हालात पर हम और थोड़ा गहराई में जाकर समझना चाहेंगे. भारतीय शेयर बाजार, एक तो भारत संपूर्ण दुनिया में सबसे उभरता हुआ ठिकाना, सबसे तेज गति से आगे बढ़ता हुआ देश कह लें कि स्थापित अभी दिख रहा है. ऐसे में भारतीय शेयर बाजार का सिर्फ एक दिवसीय यानी कल परसों का युद्ध को लेकर ही नहीं, बल्कि आने वाली पूरे एक वर्ष इस वर्ष की अवधि को लेकर यदि हम बात करें तो वैसे में बाजार कहां जाता दिख रहा, क्योंकि युद्ध के तनाव हमने तात्कालिक स्तर पर जो हो, लेकिन कई युद्ध से दुनिया गुजर रही है. जी, तो
देखिए आपने एक सही सवाल उठाया है. अब तक की जो जो नैरेटिव जिसे हम कहेंगे वो रही है कि 5 साल का एक बुल रन रहा है हमारी भारतीय स्टॉक मार्केट में, और बहुत लोग बहुत विशेषज्ञ का मानना यह भी था कि शायद भारतीय स्टॉक मार्केट एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट की ओर चल रहा है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार है, इकोनॉमिक आउटलुक अच्छी है, ग्लोबल सिचुएशन ये दिखा रही है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे शायद भारत की ओर ही आए. पर ये सारे जो असेसमेंट जो थे उसका एक काफी तरह से परिवर्तन हुआ है. पहली जो डेवलपमेंट जो हुई है, 2 दिन पहले चाइनीज सरकार की जो लिक्विडिटी पुश जो हुई है उससे मार्केट में जो एक खलबली मची है, और बहुत इंटरनेशनल निवेशकों का कहना है कि चाइना की जो रेटिंग जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई है और चाइना का एलोकेशन जो उन्होंने रखा था पहले से वो बढ़ा देंगे. उससे हम ये देख रहे हैं कि शायद भारत का जो एलोकेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत उसमें एक इम्पैक्ट हो, तो उससे कुछ पैसा जो भारत को पहले आ रहा था उस मार्केट को शायद चाइनीज की मार्केट में चला जा सकता है. दूसरी बात, जो यूएस जो फेड ने जो रेट कट 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया था उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी मैं मानता हूं वो रहेगा. तीसरी बात, जो ऑयल प्राइसेस और जो वेस्ट एशियन रीजन में जो एक 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 जो टेंशन चल रहा है उस टेंशन से भारत की ऑयल मार्केट में जैसे मैंने अभी कहा एक बहुत बड़ी एक टर्बुलेंस आ सकती है, उससे भारतीय स्टॉक मार्केट थोड़ा दबा हुआ रह सकता है. चौथी बात, यूएस की इलेक्शंस जो आएंगी उसमें अगर ट्रंप साहब वापस आते हैं तो बहुत लोगों का मानना यह है कि जो दो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, एक टेंशन कम हो जाएगा, रशिया यूक्रेन का टेंशन शायद समाप्त हो जा सकता है, पर जो वेस्ट एशिया का टेंशन है वो शायद रहेगा, पर टेंशन कम हो जाएगा पर टेंशन रहेगा. तो अगर सब चीज को आप देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना का इकोनॉमी, यूएस का फेड का जो अप्रोच, ये सब और भारत की जो अर्थनीतिक जो उसमें जो पॉजिटिव है, मैं समझता हूं कि एक अनसर्टेन टाइम रहेगा. पर जो बेसिक फोर्सेस जो है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, वो बरकरार हैं। ग्रोथ मोमेंटम जो है वो अभी भी ठीक से चल रहा है। हालांकि जो जीएसटी का नंबर, जो लेटेस्ट नंबर जो आया है, उसमें थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है। उससे बहुत लोगों का मानना यह है, शायद अगले महीने को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से जीएसटी की कलेक्शन होती है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से माना जाता है। और फाइनल जो बात मैं जो कहूंगा वो है कि अगर आप देखें कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स का जो कनेक्शन रहता है उसको अगर हम मानते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमी की ग्रोथ में एक बहुत एक कनेक्शन है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ अभी भी जो हमने देखा है पिछले 3 महीने में उतनी रिवाइव नहीं हुई है, तो अगर वो नहीं हुई है तो इकोनॉमी में भी उसका असर पड़ सकता है। सरकार के खजाने अच्छे हैं अभी भी, जो ओवरऑल जो टैक्स रेवेन्यूज जो हैं जीएसटी के सिवा बाकी अच्छे ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑन द होल अगर कहें कि जो मरीज की बात जो है, मरीज ठीक है
जी, जी, जी,
पर जो वातावरण जो है काफी दूषित है, तो उससे बच के रहना है, संभल के चलना है।
एके सर, यू स्पोक ऑफ वातावरण, वांटिंग टू नाउ कम फ्रॉम द इंटरनेशनल एनवायरमेंट टू द डोमेस्टिक सिनारियो। In other news, which is really doing the rounds, and I think it's gathered momentum, it's been happening for some time, is trading in futures and options.
Sorry.
And we've seen that SEBI has now increased barriers to entry for trading into F&O, just made it a little more, I think, expensive.
Yeah.
How will this impact, and will funds then move to the equity market?
Well, I think there is, this is... this is a development which I think should be welcome. I don't know whether you would like to talk about this thing. Maybe then we can discuss it.
Right. In fact, thank you. That's the lead into our story. The Securities and Exchange Board of India announced a new framework to curb excessive speculation in the stock market yesterday. The market regulator has raised the entry barrier and made it more expensive for retail investors to trade in F&Os. The new rules, as you were saying, Akisa, in the futures and options market include changes in the contract size and intraday trading, monitoring of positions limit. The framework will be implemented in a phased manner starting from the 20th of November. And SEBI has recently done a study on the F&O segment of the market and hence these results. F&Os are derivative contracts, just to inform our listeners once again, that derive their value from underlying assets that include stocks, commodities and currencies. You were saying.
So what I was saying is that that the derivatives segment is a highly evolved segment. It allows the evolved investor to bet on the future directions of the market without owning any single physical share in hand. What was happening was, because of this long bull run that we just now discussed, the market was throwing up new opportunities for those evolved segments, sections of investors to make some, take some bets on the future. So therefore, the futures and options market had become very active. But what had happened was that while the evolved market participant was into it, along with that, we saw a large number of retail investors got into it, and the latest SEBI report actually brings out in with graphic details how the small investors have actually taken the big hit,
right.
And they have lost their money. Now this has created a lot of risks. So what you were asking was that whether this will mean money will come into the equity market or not. My sense is that an adverse F&O market for the small investor actually does not augur well for the overall health of the stock market.
Okay.
Because the stock, the retail investors, the individual investors who has burnt his fingers will probably think twice before even getting back into the equity. So therefore, the fact that the markets regulator has stepped in and imposed higher costs on before you enter the market, and also has enforced some transparency norms, disclosure norms. So I think these are all good signs. It is good that the derivative segments have not been banned, because you need that window open for the evolved market participants, because it is a very good instrument for price discovery. So F&O segment should remain, but its entry should become little prohibitive, and it should be encouraged by only by those who understand the market and can take the risks.
Right.
So that's what is really happened. So to answer your question, whether it will mean retail investors will go back to the equity market, I think not immediately, but once the market stabilizes, hopefully they will stabilize after the current turmoil that we are seeing because of the geopolitical risks and the Chinese developments. Maybe we will see the return of the small investor back again into the main equity market.
श्रोताओं, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है हमारी, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन यानी वायदा कारोबार जो हम किया करते हैं, और हमारे अधिकांश निवेशक आपको यही सलाह देते हैं कि यदि आप खुदरा निवेशक हैं, छोटे निवेशकर्ता हैं, तो फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत सोच समझ कर जाएं, ट्रेडिंग जो रोज का होता है उसके प्रति बहुत सावधान रहें। वही सलाह आज भी हमारे विशेषज्ञ ने दी है, और जो नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ही प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाने की आशंका अधिक रहती है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिलाजुला रुख दिखा है। ईरान द्वारा इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद तनाव बढ़ने की आशंका से अमरीकी शेयर बाजार में कल नरमी दिखी थी। वहीं आज चीन द्वारा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रोत्साहन उपायों के मद्देनजर एशिया के प्रमुख बाजारों में मिलाजुला रुख दिखा है। निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक शानदार 6% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.2% फिसल गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.2% की गिरावट हुई। चीन में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार बंद रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों में मिलाजुला रुख था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.2% ऊपर कारोबार कर रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.5% की नरमी थी। वहीं फ्रांस का कैक 40 अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था।
We have a more detailed look at the US markets. US markets ended lower, with the Nasdaq losing more than 1% yesterday as investors grew more cautious after Iran fired missiles at Israel. Iran launched a salvo of ballistic missiles, a retaliation for Israel's campaign against Tehran's Hezbollah allies. In response, US President Joe Biden directed the US military to aid Israel's defense and shoot down missiles aimed at Israel, the White House National Security Council said. The Dow Jones Industrial Average fell 173 points, or 0.4%, to 42,157. The S&P 500 lost 54 points, or 0.9%, falling to 5,709. And the Nasdaq Composite dropped 279 points, or 1.5%, to reach 17,910. While the broader market fell, shares of energy companies rose, along with U.S. oil prices, which settled up by 2.4%. Shares of ExxonMobil gained 2.3%. Defense stocks also rose, including Northrop Grumman, which rallied 3%, and Lockheed Martin, which was up 3.6%. The S&P 500 Aerospace and Defense Index climbed to a record high. Utilities were up 0.8%. Airline shares fell, including Delta Airlines, which was down 1.6%. Investors avoided risk following the Middle East news, but indices ended off their lows of the day. Investors were also cautious ahead of US jobless claims data on Thursday and monthly payrolls on Friday.
श्रोताओं को हम लिए चलना चाहेंगे पहले एशियाई शेयर बाजार में और चीन की ओर। चीन में हालांकि वहां का शेयर बाजार आज बंद रहा है, लेकिन आपने भी कई बार चर्चा की है कि वहां प्रोत्साहन उपायों की चर्चा की गई है। ये प्रोत्साहन उपाय क्या हैं, किन क्षेत्रों में लागू हो रहे हैं और यानी उसकी रेटिंग जो बढ़ गई है, यानी उसकी साख बढ़ी है, वह कैसे, क्यों और कैसे, और भारतीय बाजार पर या कहें भारतीय संपूर्ण अर्थनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?
देखिए, जो जो पहला जो पहली बात जो है, जो ये प्रोत्साहन की जो आपने बात की है, ये लिक्विडिटी पुश, ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काफी मिली है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मिली है। तो ये सारे जो सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स की जो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उसमें काफी उनको सहायता मिलेगी और उनकी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में उनको बढ़ावा मिलेगा। उसे दो चाइनीज इकोनॉमी, जो हम समझ रहे थे कि चाइनीज इकोनॉमी में कोई ऐसा कोई स्टेप्स नहीं लिया जा रहा है जिससे कि चाइनीज इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जाए, वो पहला एक क्लियर इंडिकेशन मिला कि एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये स्टिमुलस मेजर अगर स्टॉक मार्केट में भी इसका प्रतिफलन होता है, स्टॉक मार्केट में अगर जब कल मार्केट की जब खुलेगी, आफ्टर दो तीन दिन की छुट्टी थी उनके वहां,
जी,
तो उसके बाद अगर खुलेगा, तो मैं समझता हूं कि जो जो पैसा जो है, जो ग्लोबल जो लिक्विडिटी फ्लो जो है, वो चाइना की तरफ थोड़ा जाएगा। उससे जो इंडियन मार्केट की जो पैसे जो आते हैं वो थोड़ी बहुत कमी पड़ेगी, वो पहला एक प्रभाव तो जरूर दिखेगा। और दूसरा प्रभाव ये होगा कि जो ग्लोबल जो एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और उसके उसके लिए जो आप डंपिंग बोलिए या बिलो कॉस्ट एक्सपोर्ट्स पुश जो चाइना करने में बहुत कामयाब हुआ है अभी तक, क्योंकि WTO का जो जो रेगुलेटरी जो एम्पायर जो है उसको रहते हुए भी चाइना चारों ओर अपने बिलो कॉस्ट प्राइसेस को एक्सपोर्ट करता ही आ रहा है। तो उससे मैं समझता हूं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत दबाव में आ रहा था, वो और भी दबाव में आ सकता है। तो भारत के लिए चाइना का खुशहाली आप समझिए तो उतनी इतनी बड़ी अच्छी अर्थनीति के लिए हमारी खबर नहीं है। हमें और भी हमारे डोमेस्टिक अर्थनीति को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट में उनका उनके साथ मुकाबला करना चाहें तो हमें इसके बहुत सो चैलेंजेस शायद बढ़ी जाएंगे चाइना के लिक्विडिटी मेजर से।
यहां पर एक बार फिर से हम घरेलू बाजार की ओर लौटना चाहेंगे और जो मानसून की पूरी कह लें कि बारिश यानी हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कृषि क्षेत्र पर भी और कुछ स्थानों पर जो हम सूखे के भी आसार देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये मॉनसून जो अब जाता हुआ दिख रहा है और मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान आए हैं उन्हें देखते हुए आने वाले दिन बाजार के लिए और अर्थनीति दोनों के लिए कैसे रहने का?
बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है। मैं समझता हूं कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप पहली बात तो अगर आप ये मानसून के बाद अगर आप रिजर्वायर लेवल देखेंगे तो वाटर लेवल्स मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो 160 है 180 ऐसे रिजर्वायर को जो मॉनिटर किए जाते हैं उनके अंदर 87-88% के रिजर्वायर
भर गया है।
तो मैं ये समझता हूं कि ये अगले साल तक जब तक बारिश ना आए तब तक की जो ये सुविधा ये एक रिकॉर्ड ये है, तो ये पानी की जो अवेलेबिलिटी, इरिगेशन की जो सुविधा और हाइडल पावर जनरेशन की जो जरूरतें पड़ती हैं इस पानी से, ये बहुत अच्छी खबर है
जी।
और दूसरी बात ये है कि जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखेंगे तो आपको आपने नोटिस किया होगा कि हमारे ईस्ट और नॉर्थ में इस बार बारिश कम हुई है। ईस्ट में अगर कम हुई है इसका मतलब यह है कि वो कम एवरेज के हिसाब से कम हुई है। तो बहुत लोगों का मानना यह है कि एक्सपर्टों का मानना यह है कि बिहार में थोड़ा बारिश कम होना शायद अच्छी खबर है, क्योंकि वो उस पानी से वो फ्लड्स कम आएंगे और कल्टीवेशन में सुविधा होगी
जी।
और पंजाब की जो कम हुई है बारिश, मानसून कम हुआ है, उससे जो इरिगेशन वहां का पंजाब का इतना 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 डेवलप्ड विकसित इरिगेशन व्यवस्था है, उसके लिए कम बारिश होने से पंजाब में उतनी
फर्क
नहीं पड़ेगा। तो सब सार्विक तौर से अगर आप देखेंगे, ये मानसून भारत की एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, ड्राउट मैनेजमेंट, वाटर अवेलेबिलिटी, हर हिसाब से ये एक अच्छी खबर है और ये इकोनॉमी को इसका एक अच्छा प्रभाव होगा।
Well, talking of the monsoon, Nikki, sir, it's also going to rain festivities in the next couple of months or so. And so how celebratory will the stock market be in this time?
Well, you know, I wish I could have given you a different kind of answer, but the current situation being what they are, I think the festival mood may be a little dampened by the overall the global market situation, which is largely driven by what has happened to West Asia and Israel's warning that it might choose a time and date and place of its own when it will go for an attack. So there is an element of uncertainty when and how it will go and retaliate.
Right.
Now that creates uncertainty in the market. Markets don't like uncertainty. They want, you know, defined things. What is defined in the Indian market is that even though GST has grown by only 3% in this September, but I think it is still growing. Your exports are not booming, but they are growing at a very, very low pace. So on the whole, I think we are doing well, and prices are under control. So on the whole, I would not be worried about the Indian market. The festival season should see maybe a revival of rural demand, particularly after good monsoons. I failed to mention to Manoj's question that monsoon has a very positive impact on rural demand. And we will see rural demand reviving, and probably your consumer goods sector, consumer durable sector, will actually see a positive bump as a result of this situation.
Right. In fact, you'd earlier spoken about oil prices. We have a little more details for our listeners. Global crude oil prices surged more than 3% today on rising concerns that Middle East tensions could escalate, potentially disrupting crude output from the region following Iran's biggest ever military blow against Israel. Brent futures reached their highest in a month, leaping $2.42 or 3.3% to $75.98 a barrel. U.S. crude also spiked $2.47 or 3.5% to $72.3. This comes after an over 5% surge on Tuesday. Iran said early on Wednesday that its missile attack on Israel was over, barring further provocation, while Israel and the U.S. promised to retaliate against Iran as fears of a wider war intensified. Tehran said any Israeli response to the attack, which Israel said involved more than 180 ballistic missiles, would be met with vast destruction. The United Nations Security Council scheduled a meeting about the Middle East for Wednesday, and the European Union called for an immediate ceasefire. The direct involvement of Iran and OPEC member raises the prospect of disruptions to oil supplies. A panel of ministers from the Organization of Petroleum Exporting Countries and Allies, together called OPEC Plus, meets later on Wednesday to review the market with no policy changes expected.
आइए चलें सराफा बाजार। घरेलू सराफा बाजार आज सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर में मजबूती देखी गई। सोने की कीमतें थोड़ी सी नरम हुई। कल 1% से अधिक उछाल के बाद आज हाजिर सोने की कीमत 0.5% घटकर $2,649 प्रति औंस पर, समाचार तैयार की जाने तक चल रही थी। इस बीच डॉलर में एक सप्ताह की सबसे तेज बढ़त देखी जा रही है। मध्य पूर्व में युद्ध की बढ़ती आशंका को लेकर चिंता है और डॉलर अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत दिख रही है। उधर चांदी, समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% घटकर $31.17 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एकेबी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
एब्सोल्युटली एके सर, थैंक यू, अ प्लेजर एज ऑलवेज। And now, listeners, before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices remain close on account of Gandhi Jayanti. Markets in Asia, Europe and the US feel jitters after Iran's strike on Israel. And global crude oil prices surge 3%. Brent climbs over $2 to around $76 a barrel. And that's it for today's program. Namaskar. Majestic, majestic, majestic.